वाणी चल रही थी 11 अक्टूबर 1966 दो पेज के मध्य में बात चल रही थी गंगा स्नान आदि करते हैं, ये भी मेटेरियल हुआ ना। गंगा का पानी भी तो मेटेरियल है ना, मिट्टी से ही सब बनता है। निराकार रूहानी बाप तो अविनाशी है, जो मेटेरियल है वो तो आज उसका दूसरा रूप है, कल दूसरा रूप हो जाएगा, और निराकार बाप जो है उसका कभी रूप बदलता नहीं है, अविनाशी है, बाकी सब है विनाशी। एक आत्मा ही अमर है, आत्मा को मेटेरियल शरीर मिलता है, आत्मा तो सब में जानवर आदि आदमी होती ही है, परंतु उनका कोई हिसाब नहीं है। यहां तुमसे कोई भक्ति मार्ग की बात कर न सके, उनसे सीधा बोल दो तो ये तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्र सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ये शास्त्र कोई निराकार भगवान ने आकर नहीं बनाए, हम मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। हम तुमसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनना चाहते। हम एक पतित पावन रूहानी बाप से ही सुनते हैं, माना हम डायरेक्ट सुनने वाले हैं और बाप से सुनने वाले हैं, किसी मनुष्य मात्र से हम सुनने वाले नहीं है। आप हमें सुनाने आए हो क्या? आप बाप हैं? हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के तो कोई बात मानते नहीं है कि आप ऐसे ही कह के बैठ जाओ शिवो हम, और हम आपको मान लें कि हाँ आप शिव हैं, आप ही कल्याणकारी है, आपकी भाषा, आपके वाइब्रेशन, आपके संकल्प, आपके कर्म सब कल्याणकारी है। आप कभी कल्याणकारी होते ही नहीं, माना आप भगवान हैं, ऐसा हमें प्रूफ चाहिए। आत्मा तो बाप को याद करती है ना, हे भगवान, आत्मा कहती है ना। वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। कौन? शिव बाप जो है भले सृष्टि पर भी आ जाते हैं, कोई तन में प्रवेश भी करते हैं तो भी कहां रहते हैं? निराकारी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि वो सब बापों का बाप है। बाप माने बीज। जो भी धर्म पिताएं आए हैं अपने अपने धर्म के बाप हैं, अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं, उनकी भी बीज रूपी स्टेज होती है, निराकारी स्टेज होती है। तो हमारा बाप तो बापों का भी बाप है, उसकी निराकारी स्टेज क्यों नहीं होनी चाहिए? हम आत्माएं भी निराकार धाम की रहने वाली है, लेकिन इस साकार सृष्टि में आकर के हम संग के रंग में आकर अब देवानी साकारी बन चुके। अब हम फिर से बाप को याद करके निराकारी बनते हैं? वो ज्ञान का सागर आए, हमको ज्ञान सुनाए, सदगति करता है, वो तो है परे ते परे रहने वाला। उससे परे की स्टेज हमारी नहीं हो सकती। हम आत्माएं नंबरवार हैं और वो सबसे परे होकर रहता है। उसका नाम ही है परमपिता परमात्मा। सब आत्माओं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण करके भाई बहन बनते हैं। आत्मा है, सब एक बाप के बच्चे हैं, तो भाई भाई है, शरीरधारी बनती है तो भाई बहन है। आत्मा सबसे शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है। परंतु ये दुख क्यों होता है तो समझाया जाता है, ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। अज्ञान माना भक्ति अंधश्रद्धा, और ज्ञान माना समझ। समझ पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं आगे पीछे सोच करके, उसमें कोई प्रकार की धोखा होने की बात नहीं रहती। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख दुख रचते हैं, नहीं, ये सुख दुख का तो रचा रचाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा फिरता रहता है। लेकिन निमित्त तो कौन बनता है? दुख देने की निमित्त तो कौन बनता है? सुख देने की निमित्त तो कौन बनता है? ये समझने की बात है। सुख देने का निमित्त है एक निराकार राम, और दुख देने की निमित्त है अनेक सर धारण करने वाले रावण रूप। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होने लगते हैं, समझते हैं कि वो सुख देने वाला है। कहते हैं ना गो गॉड फादर, अल्लाह मियां को पुकारते तो है ना, कोई भी धर्म के हो पुकारते हैं, इसका मतलब कभी उसे प्राप्ति हुई है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो रावण पांच विकारों का दुख शुरू हो जाता है। तो ये खेल है, यही रूहानी ज्ञान है, बाकी सबका है जिस्मानी ज्ञान। तो वो जिस्मानी ज्ञान हम नहीं सुनना चाहते, जिस्मानी मनुष्यों का दिया हुआ जिस्मानी ज्ञान हम सुनना नहीं चाहते। हम रूह हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं, हम रूहानी ज्ञान सुनना चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है, क्या क्या हुक्म मिला हुआ है? सिर्फ मुझ निराकार से सुनो और कोई भी साकारी देहधारी से न सुनो। अच्छा, सन 68 तक हुक्म नहीं मिला हुआ था है? 18 जनवरी सन 69 तक, जब तक ब्रह्मा ने शरीर नहीं छोड़ा तब तक हुक्म नहीं मिला हुआ था। चलो माँ का पार्ट था, लेकिन ये हुक्म नहीं था कि निराकार से ही सुनना है, साकारी माता से नहीं सुनना है। माता तो साकारी होती है, बाप निराकार होता है, तो उस समय ये हुक्म नहीं था। वाणी तो सन 66 की है। बल सन 66 की वाणी है, लेकिन उस समय इस वाणी का मनन चिंतन मंथन रूपी अमृत गीता ज्ञान अमृत नहीं निकला हुआ था। अभी वो ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी अब ज्ञानामृत अर्थात गीता ज्ञानामृत के रूप में हमारे सामने आ रही है। उसका मंथन हो चुका है, हो रहा है, और आगे चल करके देवताओं और असुरों के द्वारा सबके द्वारा उसका पूरा मंथन होगा, नंबरवार होगा। जो जितना मंथन करेगा उतना उतना गहराई में जाकर अपने अनेक जन्मों को क्लियर करेगा। तो हमको अब हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझे निराकार बाप से सुनो। तुम्हारी तो फिलॉसफी की बातें हैं, तुम डॉक्टर ऑफ भक्ति हो, ये हमारी है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल बाप ही ये नॉलेज देते हैं। इसलिए उन जिस्मानी ज्ञान सुनाने वालों के साथ बात करना फालतू है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं हियर नोएबल, उनकी बातें सुनना नहीं। हम एक भगवान से सुनते हैं, हम कोई देहधारी से सुनना नहीं चाहते। तुम मनुष्य से सुनते हो, जो भी सुनाने आए तो क्या कहो, तुम मनुष्य से सुनते हो और हम एक निराकार बाप से सुनते हैं, तो रात दिन का फर्क हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान आदि सब शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र तो 63 जन्म हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान कहते हैं तुमने बहुत गुरु गोसाई आदि किए, अब उन सबको छोड़ दो, मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम शिव है, क्या कहा उनका कह के दूर क्यों कर दिया, क्योंकि सन 66 में वो निराकार भगवान नहीं सुनाया रहा था। इसलिए भविष्य के लिए इशारा किया कि उनका नाम शिव है जो निराकार है, अब हम उनसे सुनते हैं और कोई देहधारी से नहीं सुनते हैं। बाप खुद अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, फिर आपके शास्त्र आदि की बातें हम सुने क्यों, जब भगवान हमको सुनाते हैं। इस गीता में भी श्लोक है ना, यावान अर्थ दो पान येसु, एक ऐसा श्लोक आया है जिसका अर्थ है कि गड्ढे गड़ीचियों और नदियों में तब तक कोई का प्रयोजन रहेगा जब तक उसे सागर न मिल जाए, जब साक्षात ज्ञान का सागर ही उसे मिल जाए तो गड्ढे गड़ीचियों में स्नान क्यों करेगा। ऐसे ही बात यहाँ है कि हमको ज्ञान का सागर मिला हुआ है, हम लिमिटेड बुद्धि वाले मनुष्यों से क्यों सुने। हमको आपको रूहानी लालच सुनानी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनना हो तो सुनो, हम आपसे सुनेंगे नहीं, क्या हम आपसे सुनेंगे नहीं, हम आपको सुनाना चाहते हैं, सुनना चाहो तो सुनो, हम नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म वाले पक्के होते हैं ना, तो क्या करते हैं, चाहे इस्लामी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, अपने धर्म के अगर पक्के होंगे तो अपने धर्म पिता की ही बात मानेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं। ब्रह्म कुमार कुमारियों में से बहुत से ऐसे हैं, कह देंगे तुम्हारी बात 100% सच्ची है, सब बातें तुम्हारी अच्छी है, सच्ची है, हम मानते हैं सच्ची है, लेकिन जब तक हमारी दीदी दादी दादाएं नहीं मानेंगे हम मानने वाले नहीं। तो उनको सुनाओ, उनको बताओ तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं,
लेकिन हम नहीं सुनेंगे।
हमारा बाप हमसे कहता है बच्चे मैं तुम सब 500-700 करोड़ का बाप आया हुआ, तुम नहीं सुनना चाहते, हम तुमसे कहते हैं हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो संपूर्ण निराकार भगवान साक्षात पढ़ा रहा है, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने। तो तुमको सुनना हो तो सुनो, नहीं तो हमको बुलाओ मत, क्या हमको ज्ञान तुम्हारा ज्ञान सुनाने के लिए बुलाने की दरकार नहीं है, अच्छा लगता है तो हमको बुलाओ, तुम्हें अच्छा न लगता हो तो जब तुम्हें अच्छा लगे तब बुला लेना। 11:10-66 की वाणी का तीसरा पेज, मुझने की इसमें कोई बात नहीं है कि हमको अपना ज्ञान सुनाने आए हैं तो इनकी बात सुने या न सुने, नहीं सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं मनुष्य की जगह हम जानवर हो जाएंगे क्या? कोई ऐसे सोचते हैं? कोई कुछ सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुनना तो चाहिए है। मनुष्य मनुष्य की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? लेकिन यहां तो बात दूसरी है, हमें तो सब मनुष्यों का बाप मिल चुका है, उस बाप में भी वो निराकार भगवान बाप आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हम दूसरे की बात सुनने की हमारी क्या दरकार रह गई? सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़े से बच्चे हो दूसरी तरफ, क्या पांच पांडव एक तरफ और सारी दुनिया 18 अक्षौणी सारी दुनिया दूसरी तरफ, उस तरफ है ढेर विद्वान आदि और तुम्हारी तरफ साधारण दिखने वाले पांच पांडव। बोलो, हमको कोई का नहीं सुनना है। विद्वान पंडित आचार्यों से तो हम 63 जन्म से सुनते चले आए, अब तो हमें पक्का निश्चय हो गया है क्या कि हमको भगवान बाप साक्षात पढ़ाई पढ़ा रहा है। हम पतित पावन बाप से ही सुनते हैं क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो पतित पावन बाप हमको मिल चुका है, हम अब कोई की सुनने वाले नहीं है। क्या तुम पतित पावन हो? हमको तो सब आत्माओं का बाप मिला है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप हमको मिला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझ है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। ये बाप हमसे कहते हैं, तुम तो ऐसा नहीं कहते हो कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है क्या? मनुष्य गुरुओं की सुनाने से ये दुनिया बदली नहीं और ही नीचे गिरती चली गई 2500 वर्ष की, इसलिए हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब बात दूसरी हो गई, अब स्वयं भगवान बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कलयुग के बाद अब सत्युग आना है, ये कलह कलेश का युग खलास होना है। सत्युग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। जो पतित दुनिया होती है उसी में ही बुलाते हैं क्या? पतित दुनिया में क्या करते हैं? बुलाते हैं भगवान को, हे भगवान आओ, आवाहन करते हैं। कहां की बात है? बाहर की दुनिया की, भक्तिमान वालों की बात, ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो पतित ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भगवान को बुलाते हैं, बुलाने पर भी वो खुद आता नहीं। आता है कौन? वो ही मनुष्य आत्मा। जैसे दुनिया में भी कोई सोल प्रवेश करती है तो कहती है मैं महाकाली हूं, मैं दुर्गा हूं, है उनको धूनी रमाई क्या है, आवाहन करते हैं। वास्तव में न वो दुर्गा होती है न कोई महाकाली होती है, इस दुनिया में देवियां कहां से आ गईं? ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगवान को बुलाए रहे हैं वो बुलाने की चीज नहीं है, वो तो जब आता है तो अपने आप आता है और अचानक आ जाता है, पता ही नहीं लगता कब आने वाला है और कब जाने वाला है और कहां जाने वाला है। तो हम तो ऐसे भगवान को याद करते हैं जो बुलाने से कभी नहीं आता, जब जरूरत होती है तो पुरानी दुनिया में वो सत्य ही आ जाता है। तो बाप कहते हैं मैं अभी आया हुआ हूं, अब मां में कम याद करो, क्या माम एकम, एकम माना एक बिंदी को याद करो, दूसरी कोई बिंदी को याद मत करो। हाँ बिंदी तो बहुत है और एक जैसी बिंदी है, सब कैसे पता चलेगा। माम एकम याद करो का मतलब कोई एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। 500 700 करोड़ चेहरे हैं दुनिया में मनुष्यों के, एक चेहरा दूसरे से मिलता नहीं, तब कहेंगे मां में कम याद करो। माना मुझे एक स्वरूप को याद करो, एक पर्सनालिटी को, एक व्यक्तित्व को याद करो, कोई दूसरे व्यक्ति को याद करो। अब ये दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक का। क्या मृत्यु लोक के बाद फिर अमर लोक आना है। अमर लोक में कोई भी बिना इच्छा के मृत्यु नहीं होगी, जो भी मृत्यु होगी इच्छा सहित मृत्यु होगी, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। आसुरी रावण राज्य खलास हो, अभी रावण राज्य राम राज्य स्थापन होना है। अभी किसका राज्य है? असुरों का राज्य। राज्य असुरों का है तो प्रजा कैसी होगी? प्रजा भी असुरों की है। अच्छा प्रजा असुरों की है, रावण राज्य है तो कोई पूछे कि तुम किसके राज्य में हो? राम राज्य में। तुम राम राज्य में हो? रावण की बात नहीं मानते?
नहीं
है, इतने पावरफुल हो गए हैं, घर वाले मोहल्ले वाले गांव वाले जाति बिरादरी वाले कोई प्रेशर डाले तो नहीं मानेंगे है? अच्छा राजा राम नाम है शायद। अभी राम राज्य स्थापन होना है, हमारी बुद्धि में भी अभी राम राज्य पूरा पूरा स्थापन हुआ नहीं है। जब पूरा राम राज्य स्थापन हमारी बुद्धि में हो जाएगा तो फिर हम किसी की बात हम भी नहीं मानेंगे। इसलिए मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है, ये कड़क डायरेक्शन है। क्या सब कोई इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे? लेकिन अब ये राज्य हमारे अंदर भी स्थापन होना है, अभी हुआ हुआ नहीं है। क्यों तुम जवाब दे सकते हो? अरे हमारा बाबा आया हुआ है, वो हमारा बाबा ही हमसे कह रहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। जब हमारा बाप ही ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है तो हम भी बंधे हुए हैं। अच्छा लेकिन बाबा जो है वो किसी देदारी की बात मानता है क्या? है कोई देदारी के बंधन में बंधा हुआ है क्या? नहीं, वो तो कल्याण की बातों में बंधा हुआ है। उसका नाम क्या है? शिव। अगर किसी का अकल्याण होता है तो उस अकल्याण को खत्म करने के लिए वो थोड़े समय के लिए कोई पंगा ले सकता है, रमतु रमजवाज है, बाकी ऐसे नहीं है कि वो मुकर जाएगा। तो राम राज्य स्थापन तो होना ही है, इसलिए ये अंतिम जन्म घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? जैसे कमल फूल रहता कहाँ है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, और फिर कीचड़ में से अलग कर दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं है। तो ऐसे ही भले हम घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर दो चार दिन के लिए कहीं हमें बाहर रहना पड़े तो अपने बुद्ध रूपी धरणी में देखना है कि वो कीचड़ याद तो नहीं आता है। अगर याद आता है तो हम कमल फूल समान नहीं बने, अगर याद नहीं आता है तो हम बने। फिर चार छह दिन के लिए ही नहीं देखना है, दो चार आठ मास भी देखना है लगातार। ऐसा तो नहीं कि दो चार आठ दिन तो हमने कंट्रोल कर लिया, फिर बाद में स्वप्न आने लगे, संकल्प आने लगे, तो कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये विषय सागर है, दुनिया क्या है? विषय विकारों का सागर है। इस विषय विकार के सागर से उस पार ले जाने के लिए खिवैया बाप आया हुआ है, हमारी शरीर रूपी नवैया को एकदम पार ले जाएगा। जैसे कमल फूल है पानी से ऊपर रहता है और फिर बच्चे पैदा करता है, तो हमारी बुद्धि भी विषय विकारों से उपराम रहनी चाहिए। बुद्धि लिम्पायमान नहीं होनी चाहिए। वो साधु संन्यासी क्या करते हैं? घर गृहस्थ का कीचड़ तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन बुद्धि में वो ही याद आता रहता है। यहां फिर उल्टी बात हो गई। क्या हमें रहना घर गृहस्थ की कीचड़ में है, चाहे वो कुमार हो और चाहे वो आदर कुमार हो। कुमार है तो ये थोड़े ही कहेंगे कि वो कीचड़ की दुनिया में नहीं रहते हैं। माँ बाप के साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहे पड़े हैं, तो है तो कीचड़ में ना, कीचड़ की दुनिया में। लेकिन अपने को देखे तौल के कि हमारी मन बुद्धि जो है उन विकारों में ग्रसित तो नहीं हो रही है। तुम बच्चे जानते हो हम अब निर्विकारी राजा स्थापन करने के लिए आए हैं, सारी दुनिया को बदलने आए हैं। वो धर्म पिताएं तो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, सारी दुनिया को परिवर्तन नहीं करते। और हमारा बाप सारी दुनिया को परिवर्तन करने आया है। वो धर्म पिता पहले पावन होते हैं, जब आते हैं तो पावन होते हैं, फिर वो भी पतित बनते हैं दूसरे जन्म में। हमारा बाप ऐसा नहीं है, हमारा बाप सदाशिव है और सदा ऊंचे से ऊंचे लोक का रहने वाला है और सदैव ही ऊंचे से ऊंचा काम करने वाला है। देखने वाले भल समझे ये पतित काम, लेकिन उनके देखने का ढंग दूसरा है। हमारा बाप तो सदैव पावन है। तो वो गुरु लोग, वो धर्म पिताएं तो पहले पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं, उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। क्या गुरु माना? वजनी, उनमें कोई वजन नहीं है, उनकी प्योरिटी का वजन जन्म जन्मांतर घटता जाता है। तो जिनकी प्योरिटी का वजन ही जन्म जन्मांतर घटता जाता है उनको गुरु कहेंगे कि हल्का कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो हल्के होते जा रहे हैं ना प्योरिटी में, उनको गुरु नहीं कह सकते। कोई गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही सदगति दाता है जो सर्व की बुद्धि की सदगति करता है। पहले प्यार से, नहीं तो फिर हार से, नहीं तो फिर मार से करेगा सबकी सदगति। ऐसे भी नहीं उसको हम दुर्गति दाता कहेंगे। कोई कोई ऐसे भी मूर्ख है, नहीं समझते हैं तो कहते हैं भगवान पावन बनाने आया कि पतित बनाने आया है। हमें ये मालूम होता तो हम यहां कभी नहीं आते। बाप कहते हैं बाप कभी दुर्गति दाता थोड़ा ही हो सकता है, ये कोई लौकिक बाप थोड़े ही है, ये तो पारलौकिक बाप आया हुआ है। लौकिक बाप के लिए कह सकते हैं आज की कलयुग की दुनिया में कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, लेकिन वो तो दुनिया की दुनिया भी संबंध है, ये उसका कोई जिस्मानी संबंध जोड़ने के लिए नहीं आता है, वो तो रूहानी संबंध जोड़ने के लिए आया है। तो उसको दुर्गति दाता किसी हालत में नहीं कह सकते। जो भी संसर्ग करेगा, जो भी संपर्क करेगा, जो भी सुनाएगा, वो उससे कल्याण ही होगा, बुद्धि की सदगति ही होनी है, दुर्गति नहीं हो सकती। पहले पहले वो तो पवित्र रहते हैं, वो धर्म पिता है, और गुरु तो मनुष्य तब ही करते हैं जब सदगति में जाना होता है, जब पाप बहुत होते हैं। ज्ञान सागर बाप हमको रूहानी ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए हम तुमसे बात कर नहीं सकते। तुम्हारा है ही भक्ति मार्ग, भक्ति का फल ज्ञान हमको भगवान से मिला है, हमारी भक्ति पूरी हुई, अब हमें तुमसे भक्ति की बातें सुनने की दरकार नहीं है, हमको भगवान मिल चुका है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाता है, वो तो ज्ञान देते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, क्या वो क्या कहते हैं, मुझे एक को याद करो। तुम हमें सुनाने आए हो, क्या तुम कहते हो माम एकम याद करो? तुम तो कह नहीं सकते कि मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बनने का कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही हट्टी है, और कोई पावन बना ही नहीं सकता, वो सब हैं दुर्गति के रास्ते। पतित पावन भगवान एक ही है, बाकी सब गुरु गोसाई आदि पतित हैं, तमो प्रधान है। नई दुनिया में तो सब स्वर्गवासी थे, कहां के वासी थे है? स्वर्ग, स्व माने आत्मा, ग माने गए, कहां गए? आत्म की स्थिति वाले थे, वहां देह को कोई याद नहीं करता था। अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है, क्या कहां के वासी है? नरकवासी है। इसलिए बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, मैं ही आकर रूहानी नॉलेज देता हूं। अभी बाप अपना परिचय दे रहे हैं, क्या इस दुनिया में बाप जब साकार रूप में सृष्टि पर आते हैं तो बाप के सिवाय बाप की नॉलेज, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। अगर देंगे भी तो अधूरा ज्ञान देंगे। जितना खुद को निश्चय होगा उतना ही दूसरों को निश्चय करा सकेंगे। बाप बताते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, सबको बाप ही बाप है। ये तो सब तुम उल्टी बातें सुनाते हो। सब बाप कैसे हो सकते हैं? सुल्टी बात सुनने से हमारी 21 जन्म चढ़ती कला होती है। कौन सी सुल्टी बात है? नहीं, सर्वव्यापी की बात हो रही है ना, वो उल्टी बात हो गई। तो सुल्टी बात क्या हुई? हाँ, एक व्यापी ये बात सुनने से हमारी चढ़ती कला होती है। एक व्यापी है तो वो एक कहाँ है? ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार चिल्लाते तो बहुत रहे, अभी तक भी चिल्लाए रहे। क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है? फिर ये तो बताते नहीं एक व्यापी कहाँ है। सर्वव्यापी नहीं है तो ये भी तो बताना चाहिए एक व्यापी कहाँ है। तो कहते हैं वो तो ब्रह्मा के तन में एक व्यापी था, अभी फिर सर्वव्यापी है। अभी मेरे में तेरे में हम सब दीदी दादी दादा हैं, त्रिमूर्ति शिव हैं। आज एक मेगा प्रोग्राम होगा, आज एक त्रिमूर्ति बन के तैयार हो जाएगी पोस्टर में, कल दूसरा मेगा प्रोग्राम होगा, कल दूसरी त्रिमूर्ति बन करके तैयार हो जाएगी। रोज त्रिमूर्ति बदलती रहती है। हम सब ब्रह्मा है, ब्रह्मास्मि, हम सब विष्णु है, हम सब शिवो हम है। तो सारा ज्ञान ही उल्टा हो जाता है। बाप कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से पहले भी तुमने दुर्गति पाई थी, अब फिर तुम दुर्गति पाए रहे हो। अभी एक निराकार बाप एक व्यापी बनकर की सृष्टि पर आया हुआ, मुकर्रर रथ में आया हुआ है। अब उस मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को अगर नहीं पहचाना तो फिर दुर्गति होती जा रही। मनुष्यों से सुनने से तो सब उतरते ही आए हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है, उस हिस्ट्री को, उस हिस्ट्री से तो सबक लेना चाहिए ना। दुनिया उतरती आई है या चढ़ती कला में गई है? उतरती चली आई है। सब मनुष्य उतरते आए हैं। ये दुनिया तो नरक है ना, स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को और नरक कहा जाता है पुरानी दुनिया को। राव राव नरक, क्या नाम दिया? राव राव नरक। जैसे नाली होती है ना तो उसमें कीड़े रौरे आते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कोई इसके ऊपर चढ़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ता है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। तो उन्हें बताओ कि सर्वव्यापी के ज्ञान की दुनिया एक दूसरे को काटने वाले कीड़ों की रौरव नरक की दुनिया अब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। अभी अगर नबी मानते हो, कहीं छुपा के रखा हुआ है दुनिया की नजरों से, दुनिया की आंखों में धूल झोंक भी रहे हो, तो आगे चल करके ये स्पष्ट सारी दुनिया के सामने दिखाई देगा और पकड़ में आ जावेंगे कि हाँ ये वैश्याओं की दुनिया है। अब इस रौरव नरक की दुनिया से उद्धार करने के लिए बाप आया हुआ है। क्या बनाने के लिए आया हुआ है? वैश्यालय को शिवालय बनाने आया। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही नरक है, यहाँ ही स्वर्ग है? उनको ऐसे भी कह देते हैं क्या? इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। जो सुख में रहते हैं, महलमाड़ियों अटारियों में रहते हैं, वहां देखो एक मच्छर मक्खी भी नहीं है उनके घर में, तो वहां देखो स्वर्ग है, है? कोई झोपड़ियों में रहते हैं, नालियों के किनारे रहते हैं, गंदे नालों के किनारे रहे बड़े हैं, नरक है। कहते हैं ना जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में है। अरे स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। क्या? जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? स्वर्ग। कहाँ गया? स्व की स्थिति में जहां गए हो सब, वो है स्वर्ग। और आज की दुनिया में परचिंतन में लगे हुए हैं, पर को याद कर रहे हैं या स्व को याद कर रहे हैं? पर को याद कर रहे हैं। तो परचिंतन में रहने वाली बुद्धि परवश होगी ना, स्व के कंट्रोल में कैसे होगी? यहां स्वर्ग कहां से आया? यहां आत्मिक स्थिति में रहने वालों की दुनिया इस दुनिया में 500 करोड़ की दुनिया में नहीं हो सकती। जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया है तब तक स्वर्ग नहीं हो सकता। बल मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। क्या? जैसे यज्ञ के आदि में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी और कराची में एक संगठन आराम से शांतिपूर्वक पड़ा हुआ था, तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का मॉडल बना के देता हूं। बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में वो कोई स्वर्ग कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? जो संपन्न स्टेज का ऐसा संगठन तैयार होगा उसको वैकुंठ कहेंगे। क्या? वैकुंठ कहेंगे। अंग्रेजों की भाषा में उसको पैराडाइज कहेंगे, हिंदुओं की भाषा में वैकुंठ कहेंगे, मुसलमानों की भाषा में उसको जन्नत कहेंगे। लेकिन स्वर्ग, स्वर्ग जहां होगा वहां तो सब आत्म की स्थिति वाले होंगे। इस दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं होगी जो आत्म की स्थिति में पक्की न हो। तो यहां तो कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। वो भले कहते रहे, सुनाते रहे कि चलो हम तुमको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां तुम्हें स्वर्ग का अनुभव हो, चलो शांति धाम, चलो सुख धाम। अरे वो तो अल्पकाल की बात है। जो स्वर्ग है वो तो 2500 साल तक लगातार स्वर्ग ही स्वर्ग रहता है, वहां नरक का नाम निशान होता नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो से सत्व प्रधान बनना है तो अभी मां में एकम याद करो। क्या? जो एक व्यापी बनकर के आया हुआ है उसे एक को याद करो, जिसका डायरेक्शन है कि और कोई की बात सुननी नहीं है। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी तो सारी दुनिया है दुश्मन। क्या है?
सारी दुनिया।
कौन सी सारी दुनिया है? तुम्हारी सारी दुनिया दुश्मन है। ये इतने बैठे हुए हैं वो सब दुश्मन है? नहीं, दुश्मन नहीं हो सकते। आपस में कभी लड़ाई नहीं होती है, है? अब बंदरों की महफिल में आया हुआ हूँ तो बंदर की महफिल क्यों बताई? है मंदिर लायक लड़ाई तो होती है, तुम्हारी लड़ाई बंद हो गई। सविता माता आएगी नहीं? है बहुत चालाक हो, सविता माता को नहीं लाते। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारे सब दुश्मन है। क्या क्या है? दुश्मन बुरे मन है। तुम्हारे मन के मुकाबले जो भी तुम्हारे मन के अनुकूल बात नहीं करते हैं वो तुम्हारे क्या हो गए? दुश्मन हो गए। अच्छा, सारी दुनिया हमारी दुश्मन है तो दोस्त कौन है? एक बाप ही सदा काल का हमारा दोस्त है और सारी दुनिया दुश्मन है। क्योंकि तुम वेदों शास्त्रों आदि को मानते नहीं हो तो समझते ये भक्ति आदि करते नहीं है। ये नास्तिक है क्या? ये शास्त्रों पर आस्था नहीं रखते, इसलिए ये नास्तिक है। तुम फिर कहती हो जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। ऐसे नहीं कि जो शास्त्र को नहीं जानते वो नास्तिक है। नास्तिक कौन है? जो एक व्यापी बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो शास्त्र पढ़ करके सुनाए रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या हो गए? वो सब नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि जो एक प्रैक्टिकल बाप आया हुआ है, गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान अमृत दे रहा है, उसको वो नहीं जानते, इसलिए वो नास्तिक है। निर्धन के धक्के खाते रहते हैं। क्या वो निर्धन के हैं? धक्के खाते रहते हैं। हम तो आस्तिक बने हैं। बाप को और रचना को हमने अच्छी रीति जान लिया है। अब हम इधर इधर उधर कहीं भी धक्का खाने वाले नहीं है। अब तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। हाँ, तुमको अगर हमारी नाली सुनना हो तो आकर के समझो, हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन तुमको सुनना हो तो सुनो, बाकी हमको कुछ समझने का नहीं है। क्या हमको तुम्हारे से कुछ भी समझना नहीं है? हमको तो एक बाप मिला है समझाने के लिए, हमको पक्का पक्का सुप्रीम टीचर समझाने वाला मिल गया है, हमें अभी किसी से एक्सप्लेनेशन लेने की दरकार नहीं है। ऐसे होता है, कई जगह क्लास चलता है, बाबा की वाणी चलती है, कैसेट चलती है, वीसीडी चलती है, डीवीडी चलती है, तो कोई गुरुजी महाराज बैठ करके एक एक वाक्य का लंबा लंबा व्याख्यान करने बैठ जाते हैं। बैठते हैं कि नहीं? कहीं देखा? एडवांस में भी ऐसे होता है क्या? बाबा की वाणी चलती है आधा घंटा और उनकी वाणी चलती है बीच में एक एक घंटा। तो हम कह सकते हैं उनसे कि हम तो एक से सुनते हैं, हमें और किसी की सुनना नहीं है। हाँ, टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट सुनाता है, तो हम बाप की वाणी टैप रिकॉर्डर में तो सुनते हैं, बाकी हम किसी से सुनने वाले नहीं है। जो खुद पतित हैं, कहते हैं पतित पावनी गंगा, उनके पास जाकर के हम क्या करेंगे? क्या जो खुद पतित हैं, जो पतित होंगे ना, वो किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं। जो कहता है कि हम पतित हैं, तो उसका मतलब पतित है तो कोई को कोई तो तुम्हारे से ऊंचा है, कोई तो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा पवित्र है। जिसको तुम जास्ती पवित्र मानते हो उसकी बात मानोगे? अगर एक की बात मानते हो तो वो हमें बताओ कौन है। अगर नहीं मानते हो तो हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। पानी कैसे पावन कर सकेंगे? जो भी नदियां हैं उन सब में पानी है, जो भी सरोवर है उन सब में पानी है, जो भी बादल है उन सब में पानी है, वो पानी के सागर है। हम तो ज्ञान सागर का मंथन करने वाले हैं। ज्ञान सागर की जो बातें हैं हम उन पे मनन चिंतन मंथन करते हैं, हम कोई शास्त्रों की बातों पर मनन चिंतन मंथन नहीं करते। पानी कैसे पावन बना भी? तो ऐसे ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में पक्की रहनी चाहिए। भक्ति अभी मुर्दाबाद होने वाली है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, यही हमारा नारा है। क्या
यही हमारा नारा है?
नारा है तो भक्तों को तो बहुत बुरा लगेगा क्या कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कहते हैं और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद कहते हैं। सारी दुनिया ज्ञानी हो गई, ये सिर्फ ज्ञानी हो गए। बाप कहते हैं अभी तुमको सबको वापस जाना है। क्या जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, अब इस दुनिया को छोड़ करके हमें कहाँ जाना है? सबको वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? घर वापस जाना है। कहाँ है घर? है इसी दुनिया में है। अभी जहाँ हमें वापस जाना है, उसमें जाने के लिए हमको लोग मजबूर कर देंगे। अगर हम स्वतः ही नहीं गए तो क्या होगा? ये दुनिया हमको मजबूर कर देगी जाने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया अब हमारी दुश्मन है, वो मानने वाले नहीं है। फिर जब हम जाकर के शांति धाम में बैठ जाएंगे, तब उनकी अशांति बढ़ेगी, तब वो भी भागेंगे। बोलो, हम कोई भी मनुष्य का सुनाया हुआ आप ज्ञान नहीं सुन सकते क्या? तुम्हारे ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, अब हम और किसी की बात सुनने वाले नहीं है। शास्त्र सुनाया कब, किसने और किसको सुनाया? किसने सुनाया? कहेंगे व्यास ने सुनाया। सबसे पहले किसने सुनाया? व्यास ने सुनाया। कब सुनाया? कहेंगे द्वापर युग में शास्त्र बने थे। द्वापर कब हुआ? कहेंगे लाखों वर्ष पहले। कोई बात ही नहीं ठहरती, तो उनसे पूछना पड़े ये शास्त्र बनाया कब, तो कहेंगे द्वापर में बनाया। जिस समय भगवान ने बनाया सुनाया, उस समय तो कोई बना ना सके क्या? उस समय कोई शास्त्र बना ही ना सके। सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। मूल एक बात में ही मुझे हुए हैं। किस बात में? कल्प की आय लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि में नहीं बैठता है क्या? लाखों वर्ष भी किस लिए कह दी? इसलिए कह दी कोई पूछेगा ही नहीं कि लाखों वर्ष की सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। अरे भगवान तो आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उसी को ज्ञान कहा जाता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं मनुष्य, मनुष्य की व शास्त्र किसकी सदगति कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऐसे विचार चलने चाहिए। हमको ऐसे कोई भी मनुष्य की बात सुननी नहीं है, ना हम सुनेंगे ना मुझेंगे क्या? कोई की बात सुनने बैठ जाएंगे, माना कुछ न कुछ इंटरेस्ट है तो मुझेंगे, उसकी बात सुनेंगे तो कुछ न कुछ मुझान पैदा हो जाएगी। मनुष्यों के प्रश्न हमें चाहिए ही नहीं क्या? कोई प्रश्न सुनाना चाहता है, ये प्रश्न बताओ वो प्रश्न बताओ, तो मनुष्यों के प्रश्न हमें चाहिए नहीं। तुम वेद शास्त्र के प्रश्न निकालते हो, हम वेदों शास्त्रों के प्रश्नों से कुछ लेना देना हमारा है ही नहीं। हम तो उनको मानते ही नहीं, वेद शास्त्रों को, उनमें सब में भूसा भरा पड़ा है। मनुष्यों की बुद्धि में ही भूसा भरा पड़ा है, मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं। हाँ, उसमें कुछ थोड़ा बहुत सार है, वो सार हमारा बाबा क्लियर करते हैं। तो हम बाबा ने जो बातें शास्त्रों की उठाई हुई है, हम उन शास्त्रों की बातों को ही रेफर करते हैं, वो ही सुनते हैं और वो ही दूसरों को सुनाते हैं। तो हम एक बाप का सुनते हैं, बाकी मनुष्य तो सब इविल सुनाते हैं। हमको तो एक परमात्मा से ही सुनना है, कोई से भी जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। कोई जास्ती डिबेट करे तो नहीं सुनना है। तुमको समझना है तो आकर के हमसे समझो, एकांत में अकेले में बैठ कर के हुजूम बना करके यहां आना चाहो कि हमारी बातों का जवाब दो, तो हम तुम्हारी कोई बात सुनने वाले नहीं है, तुम्हारे प्रश्नों का कोई जवाब देने वाले नहीं है। आप चाहे जहां चले जाओ। अच्छा जिज्ञासु होगा तो प्यार से आकर के अकेले में बैठ शांति से समझेगा। अगर हो हल्ला मचाने के लिए आया हुआ होगा तो हुजूम बना के आएगा। तो समझना हो तो आकर के समझो। हमको शिव भगवान पढ़ाए रहे और ब्रह्मा तन से पढ़ाए रहे हैं। क्या ऐसे नहीं कि अल्लाह मियां ने ये फरमाया वो फरमाया, जैसे मुसलमान कहते हैं वैसे हम भगवान कोई ऊपर से आकाशवाणी कर रहा हो और हम पढ़ते रहे हो, ये हमें कोई प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान स्वयं हमको आकर के पढ़ाते हैं और ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन से पढ़ाते काम, ब्रह्मा तन से पढ़ाते। ब्रह्मा ने तो 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया, झूठ क्यों बोलते हैं? कोई पूछे तो क्या करोगे?
वो
टाइटल लारी ब्रह्मा था। अच्छा, जो टाइटल लारी ब्रह्मा नहीं है, ओरिजिनल ब्रह्मा वो तुम्हारा कहाँ है वो हमें बताओ। जिसको तुम बड़ी अम्मा ब्रह्मा कहते हो वो कहाँ है? वो जगदम्बा कहाँ है? जगदम्बा को ब्रह्मा को बात तो एक ही है, वो कहाँ है? एडवांस पार्टी में कहाँ है?
दिल्ली।
दिल्ली में? चलो दिखाओ चलिए। हैं?
आपको पता है?
हैं?
आपको पता
है? आपको पता है? अरे पूछने वाले पूछे तुमसे तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, वो जगदम्बा जो सुनना और सुनाने का धंधा करती है, क्या वो पानी की नदी है? क्या सरस्वती क्या है? पानी की नदी है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला कोई सागर? सागर नहीं है। वो कहाँ है उससे तुमको लेना देना नहीं है, ना हमको लेना देना। हमको तो एक से लेना देना है। किससे? एक बाप से लेना है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा की रात होती है? अभी तो बताया ब्रह्मा का दिन होता है, तो जिसका खुद ही दिन और खुद ही रात होती है, अल्टा पल्टा खाता रहता है, तो उसे हम क्यों सुनेंगे? हम किससे सुनते हैं? हम प्रजापिता ब्रह्मा से सुनते हैं, जो मुकर्रर रथ है। हम उस मुकर्रर रथ से सुनते हैं और उसी से तुमको मिलाते हैं। तुम्हें पहचान हो, करना चाहो तो आकर के सुनो। तो ब्रह्मा तन से वो आकर के सुनाते हैं। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन एक नाम है जो बहुतों का नहीं होता है। कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव तो उसमें प्रवेश करके सुनाने वाला है, लेकिन एक ही मुकर्रर रहता है जिसके अनेक नाम नहीं है, उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की दिन और रात नहीं होते, माना वो निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता वही परमात्मा शिव है। कौन? जिसके तन में आकर के परमात्मा मुकर रूप से हमको पढ़ाई पढ़ाते। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।